आरवी ने अयांश को लंगूर कहा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। आरवी ने ऊपर से भौहें चढ़ाकर उसे चिढ़ाया। अयांश खुद को रोक न पाया। तुम्हारी? वो उस पर झपटने ही लगा कि आरवी फट से एक तरफ हट गई। उसने मेज पर रखी फलों की ट्रे से चाकू उठा लिया और अयांश की ओर चाकू करते हुए बोला, दूर रहेगा मिस्टर महला। अयांश उसे घूरते हुए बोला, वाह, छेड़ती भी हो और डरती भी हो, बचाव में चाकू दिखाती हो। आरवी चाकू की ओर देखते हुए बोली, हाँ तो हम आपसे थोड़ी डरते हैं, अब आप जाइए यहाँ से वरना आप पर यह चाकू चल जाएगा। ये सुनकर अयांश हल्का सा मुस्कुराया। ओ तो फिर तुम अपनी तरकीब लगा रही हो, मुझे तंग करके चाकू दिखाकर खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही हो। ये सुन आरवी मन ही मन बोली, ज्यादा नहीं पर दिमाग तो है इनमें। खैर मुझे तो इनको खुद से दूर रखना है, वरना अपने काम पर फोकस भी नहीं होगा और इनके रहते परेशान होंगी वो अलग। तभी अयांश बाथरूम की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो वर्तिका, मुझे चाकू मारना है तुम्हारी सोना परी। एक ही सांस में ये सुनकर आरवी की आंखें फैल गईं। उसने फट से बाथरूम की ओर देखा जहां वर्तिका नहीं थी। इसी बीच अयांश ने आरवी के हाथ से चाकू छीन लिया। उसने आरवी को अपने करीब खींचा और चाकू आरवी के गले से लगाते हुए बोला, तुम चाकू दिखा सकती हो पर मैं चला सकता हूँ, पता है ना वाइफी, भौहें चढ़ाते हुए। ये सुनकर आरवी की सांस अटक गई। वो थूक निगलते हुए कभी अयांश की ओर देखती तो कभी चाकू की ओर। गले पर रखा चाकू और अयांश का व्यवहार, कोई दो राय नहीं थी कि अगर वो हिली या बोली तो चाकू उसकी गर्दन काट सकता है। मन ही मन उसने खुद से कहा, कैसे पागल इंसान है ये, अपना डर छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसे में तो डरना बनता है, जान का सवाल है। घबराते हुए आरवी को घबराता और डरता देख अयांश का गुस्सा शांत हो गया। उल्टा उसे मजा आने लगा क्योंकि अब आरवी की कैंची सी चलने वाली जुबान भी बंद थी। वो अयांश का अपमान करना तो दूर, एक शब्द भी नहीं कह पा रही थी। चेहरे पर डर साफ छलक रहा था, वो भी चाकू लगने का। मानो थोड़ी देर पहले जो हिम्मत थी वो अचानक गायब हो गई। तभी अयांश ने चाकू की नोक आरवी की गर्दन पर रख दी। ये देख आरवी की आंखें फैल गईं और हवाइयां उड़ गईं। तभी अयांश मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, बोलती बंद कैसे हो गई, कहाँ गया तुम्हारा हिम्मत वाला अवतार? अब बात करो आंखों में आंखें डालकर, अब सुनाओ, थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी खुद हूं और तुम लंगूर, खुद के हाथ से बाजी निकल गई तो चुप्पी साध ली। आरवी मन ही मन बोली, काहे की बाजी, सिर पर तलवार लटक रही है, गले पर चाकू, हिम्मत तो अभी भी है जो बाद में दिखा सकती हूँ, पर अभी जान जरूरी है, जान बची तो लाखों पाए, मौके और मिलेंगे आपको सबक सिखाने के, बदला लूंगी। मजबूर कर दिया आपकी इस हरकत में चुप रहने के लिए, वरना जवाब देना आरवी जानती है, वो भी बिना आपसे डरे। गले पर चाकू रखकर शेर बन रहे हैं, पता है ऐसा ना किया होता तो मुझसे भिड़ना पड़ता और उसमें सिर्फ गुस्सा आता आपको। मेरे पास आपको तंग करने के लिए बहुत कुछ है मिस्टर मेहरा, पर अभी और कुछ जरूरी है, इसीलिए आपको दूर रखने के लिए आपको लंगूर बोला, ताकि इंसल्ट देख भाग जाओ यहाँ से, वरना मन तो मेरा आपसे बात करना तो दूर, देखना का भी नहीं करता। तभी अयांश ने वो चाकू थोड़ा सा आरवी के कंठ पर चुभो दिया। आरवी श करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अयांश ने कहा, देखो मैं जख्म खुद देता हूँ और इन पर मरहम भी नहीं लगाता, रास आई मेरी बेरुखी, मेरी हमदर्दी के तुम काबिल नहीं। ये सुनकर आरवी ने आंखें खोली तो उसकी आंखें नम थी। नम आंखें देखकर अयांश ने चाकू को उल्टा करके चेहरे पर घुमाया और आरवी को शीशे की ओर घुमाते हुए बोला, देखो खून बह रहा है और दर्द भी हो रहा होगा ना, सोचो अगर यहीं चाकू पूरा चल जाए तो। आरवी ने आईने से गर्दन पर नजर डाली तो थोड़ा खून निकल रहा था। ये देखकर वो अयांश की ओर देखते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सोना परी कहते हुए वर्तिका की आवाज आई। अयांश ने फट से आरवी को छोड़ा और चाकू की नोक साफ करके मेज पर वापस रख दिया। आरवी ने अंगुली से गर्दन साफ की और वर्तिका की ओर देखा। हाँ वर्तू? वर्तिका बाथरूम से निकली तो उसकी नजर अयांश पर पड़ी। वो आगे आते हुए अयांश को देख बोली, ये हमारे रूम में क्यों आए हैं? आरवी अयांश की ओर देखते हुए कुछ कहती कि तभी अयांश ने अपना हाथ फलों की ओर करते हुए कहा, वो फल? वर्तिका फलों की ओर देखते हुए बोली, ये फल लेकर आए हैं सोना परी। झूठे, आरवी मन ही मन बोली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वर्तू ये आपके लिए फल लेकर आए हैं, चलो खाते हैं, तुम्हें भूख लगी थी ना? वर्तिका हाँ में सिर हिलाती है और अयांश को वहां से जाने को कह देती है। आरवी ने वर्तिका को बिस्तर पर बिठाया और सेब की ट्रे उठाकर वर्तिका के सामने ले आई। अयांश अभी भी वहीं खड़ा था। आप जाओ ना, वर्तिका अयांश को घूरते हुए बोली। आरवी ने वर्तिका की ओर फल बढ़ाते हुए कहा, लो खाओ, वो चले जाएंगे। वर्तिका सेब खाने लगी। तभी अयांश ने भौहें चढ़ाते हुए चाकू की ओर इशारा किया और अपनी अंगुली अपनी गर्दन पर घुमाई। ये देख हार्वी ने अपने हाथ में लिया चाकू अयांश को दिखाते हुए पेट में घुसाने का इशारा किया। अयांश की आंखें छोटी हो गई। वर्तिका सेब खाने में मस्त थी। तभी अयांश का फोन बज गया और वो अयांश को घूरते हुए वहां से चला गया। आरवी ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोली, चलो भला टली। वैसे मैंने सोचा था कि वर्तिका को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो सारी चीजें हटा दूंगी, साइड में कर दूंगी जिससे उसको चोट लग सकती है। राधे भैया को भी बोलूंगी यूज के बाद चाकू वगैरह संभाल कर रखें, बस नुकसानदेह चीजें वर्तिका के हाथ में ना आए। पर अब वर्तिका, क्या मिस्टर मेहरा के सामने से भी ऐसी चीजें बचा कर रखनी होंगी? खुद को तो नहीं, मुझे जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, वरने सर फिरूं का क्या भरोसा। शुक्र है चाकू थोड़ा सा लगा, पर बूंद खून की जगह नदी बह जाती मेरे खून की। जान से तो ये मार नहीं सकते, पर दर्द देने में तो माहिर हैं, और खुद तकलीफ में होंगी तो वर्तिका का ध्यान कैसे रखूंगी। मिस्टर मेहरा से उलझने से पहले इधर उधर पहले नजर डालनी होगी, वरना मेरा घाटा होगा। उनका क्या जाता है? तभी वर्तू बोली, तुम भी खाओ ना सोना परी, बहुत यमी है। ये लो तुम खाओ, मैं भी खाती हूँ, आरवी मुस्कुराते हुए बोली। अयांश नीचे पहुंचा तो दिनकर जी और विनीत हाल में बैठे थे। तभी राधे उन सब के लिए चाय कॉफी लाया। दिनकर जी ने विनीत को चाय देकर अयांश की ओर आकर बोला, अयांश बाबा आपकी कॉफी। अयांश सोफे पर हाथ टिकाते हुए बोला, नहीं चाहिए। राधे पर, अयांश उसे घूरते हुए बोला, कहा ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। राधे दिनकर जी की ओर देखता है, उन्होंने उसे जाने का इशारा किया और वो कॉफी लेकर वापस चला गया। तभी विनीत बोला, राधे दूसरी बार कॉफी लेकर आया है, फिर मना कर दिया, पी क्यों नहीं रहा है? अयांश दिनकर जी की ओर देखते हुए बोला, नहीं बीनी, और आकर सोफे पर बैठ गया और अपने फोन पर अंगुली चलाने लगा। दिनकर जी और विनीत ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ देर बाद दिनकर जी बोले, क्या हुआ, नाराज है आप हमसे? बात नहीं करोगे अंशु दादू से? अयांश उनकी ओर देखते हुए बोला, बात आप सुनेंगे भी क्या जो मैं आपसे करूं? दिनकर जी मुस्कुराते हुए बोले, तो आपको क्या लगता है आप जो चाहेंगे हमेशा वही होगा? सब आपकी मान सकते हैं, हम माने जरूरी तो नहीं, आपको भी तो सुनना मानना चाहिए ना। अयांश पोहे से कोरते हुए बोला, आपको अपनी चलाने से मना नहीं है दादू, भले ही मैं किसी की ना मानू, पर मैं आपकी सुन भी सकता हूँ और मानता भी हूँ। आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, पर अब जो हो रहा है वो उस लड़की, उस आरवी की मर्जी है, अब आपकी मेरी नहीं उसकी चल रही है। आप मेरी बात अपने पोते की बात सुनने की बजाय उस लड़की की बात मान रहे हैं, इतना भरोसा उस पर, ऊपर की ओर इशारा करते हुए।
दिनकर जी ने अयांश और विनीत की ओर देखा। आप भी करके देखिए भरोसा, एक बार भरोसा करने में क्या जाता है बेटा, क्या पता बात ज्यादा बिगड़ने से बच जाए। ये सुनकर अयांश सोफे से उठ गया। उस पर भरोसा कभी नहीं, वो लायक ही नहीं है भरोसे के। आपको बातों में ले सकती है, मुझे नहीं। आपने मेरी ना मानकर उस लड़की का साथ देने का सोचा है ना दादू, तो दीजिए साथ। एक फैसला आपने लिया है ना, तो अब एक मैं लूंगा। आप बेशक अपनी मर्जी चला सकते हैं दादू, जो आ गए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता आपसे, पर मुझे मेरी चलाने से आप भी नहीं रोक सकते हैं, राइट? क्योंकि मैं आपकी कुछ मान सकता हूँ, सब नहीं, मुस्कुराते हुए। ये सुनकर दिनकर जी और विनीत दोनों हैरान हो गए। दिनकर जी परेशान होते हुए बोले, क्या करने वाले हैं अब आप? मेरा फैसला नहीं बदलेगा, आपको मेरी बात माननी होगी अयांश, और आपको मेरी, आप मेरी मानिए मैं आपकी, दैट्स इट दादू। विनीत सोफे से उठते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, अब कौन सा डिसीजन लेने वाले हो तुम? दादू के अकॉर्डिंग तो यही रहेगी। अयांश विनीत की ओर देखते हुए बोला, हाँ यही रहेगी वर्तिका, जो दादू या कहूँ तो वो आरवी चाहती है वो कर सकती है, पर अब कुछ मेरे अकॉर्डिंग भी होगा। इतना कहते हुए अयांश ने राधे को आवाज़ दी। राधे वहां भाग कर आया। अयांश ने उसे कहा, आरवी को बोलो जाकर अभी नीचे आए। राधे जी बोलकर तेजी से ऊपर चला गया। अयांश पैंट में हाथ डालकर इधर उधर चलने लगा। दिनकर जी और विनीत हैरानी से उसे देख रहे थे। राधे ऊपर रूम में पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आरवी ने राधे की ओर देखा। हाँ राधे भैया, राधे पीछे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला, वो आपको अभी नीचे बुलाया है। आरवी बिस्तर से उठते हुए बोली, किसने? वो अयांश बाबा ना, मालिक और विनीत बाबा भी हैं, अभी बुलाया है और जल्दी, राधे ने कहा। आरवी ने वर्तिका की ओर देखा और ठीक है कहते हुए वर्तिका से बोली, तुम फल खाओ मैं अभी आती हूँ। वर्तू, वर्तिका मैं भी आती हूँ। आरवी, नहीं मैं तुमको लेने आऊंगी, तब तक फल खत्म करो फिर हम गेम खेलेंगे। राधे भैया आप वर्तिका के पास रहना, जब तक मैं आती हूँ ख्याल रखना, ओके? राधे अंदर आते हुए बोला, जी आप जाइए हम हैं यहाँ। आरवी ने फलों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये खिला देना, और ये, चाकू उठाते हुए, हम ले जा रहे हैं, हम आए। वर्तू, आरवी ने सेब का एक टुकड़ा उठाया और खाते हुए रूम से चली गई। सेब खाते हुए सीढ़ियों से नीचे जाते उसकी नज़र अयांश पर पड़ी। ये ऐसे परेड क्यों कर रहे हैं? अब क्या हो गया इनको? पता नहीं कौन सा स्यापा खड़ा करने वाले हैं मेरे लिए। अच्छा तो मैं इनसे सोच भी नहीं सकती, पक्का कुछ उल्टा ही करेंगे। खैर देखते हैं, कहते हुए आरवी भागते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। आरवी को आता देख अयांश उसी जगह रुक गया। आरवी सेब चबाते हुए अयांश के सामने जा खड़ी हुई। हाँ कहिए मिस्टर मेहरा। तभी अयांश का ध्यान आरवी के हाथ में पकड़े चाकू पर गया। आरवी ने चाकू की ओर देखा तो हंसते हुए बोली, डरिए मत, आप पर वार करने के लिए नहीं लाए हैं वो। वर्तिका ना ले ले इसलिए नीचे ले आई हूँ। इस चाकू में इतनी धार कहाँ जो आपके आर पार हो जाए। किसी दिन तलवार से सोचेंगे, पर अभी आपको मारने का मन नहीं, चोट पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं आपके जैसे। खैर बोलिए, किस लिए बुलावा भेजा? अयांश ने आरवी के हाथ से चाकू छीना और विनीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, पकड़ो इसे और यहाँ छोड़ना मत, वर्तिका नीचे भी आ सकती है। आरवी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा लगा देखकर, आपको भी वर्तिका की इतनी परवाह है। तभी अयांश तबाक से बोला, वन मंथ? आरवी हैरान होते हुए बोली, वन मंथ?